नमस्कार भारत 20 मई दिन शनिवार, मैं हूँ आत्सल्य राय। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए करीब 70% वोटिंग मतगणना जारी, भारत के लिए किसकी जीत फायदेमंद?
भारत के लिए रूहानी आ जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो इकोनॉमी को खोल रहे हैं।
झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद भीड़ के हाथों मारे गए लोगों के परिजन का विरोध, जमशेदपुर के हल्दी पोखर में नहीं हो सका मृतकों का पोस्टमार्टम।
पीड़ित परिवार साफ शब्दों में यह कह दिया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, ना ही हम लोग पोस्टमार्टम कराएंगे, ना ही उसे डिस्पोजल करेंगे।
और विवेचना में सुनवाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन के आखिरी कुछ घंटों का हाल।
राजीव गांधी की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं थी, लेकिन वो कांग्रेस के नेता होने की वजह से उन्होंने वहाँ मद्रास और श्री बुद्धपुर जाने का फैसला लिया।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। ईरान के राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति हसन रूहानी को चुनौती दे रहे उम्मीदवार इब्राहिम रईसी ने मतदान में अनियमितताओं की शिकायत दर्ज करवाई है। देश के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह खमेनेई के करीबी और विचारधारा से रूढ़िवादी रईसी ने राष्ट्रपति हसन रूहानी के समर्थकों पर वोटिंग बूथों पर प्रोपागेंडा करने के आरोप लगाए हैं। ईरान के चुनाव नियमों के तहत ये प्रतिबंधित हैं। देश के गृह मंत्रालय के मुताबिक करीब 70% लोगों ने मतदान किया और 4 करोड़ से अधिक वोट डाले गए। मतदाताओं के उत्साह के चलते मतदान की अवधि 5 घंटे तक बढ़ा दी गई और मध्यरात्रि तक मतदान हुआ। चुनावों के नतीजे शनिवार दोपहर तक आ जाएंगे। अमरीकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस आए रूसी अधिकारियों से कहा था कि FBI के पूर्व निदेशक जेम्स कोमी सनकी थे और उन्हें पद से हटाकर उन पर से दबाव कम हुआ है। व्हाइट हाउस ने इसका खंडन नहीं किया है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के चुनाव अभियान और रूस के संबंधों की जाँच के केंद्र में व्हाइट हाउस के एक मौजूदा अधिकारी हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं। नई मीडिया रिपोर्टों पर टिप्पणी देते हुए रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर विल हर्ड ने कहा कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें सुनिश्चित करना होगा कि जांच प्रक्रिया के तहत हो और पूरी तरह निष्पक्ष रहे। हर खबर जो सामने आ रही है उस पर हम तीव्र प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि जांच सच तक पहुंचेगी। सीनेट की इंटेलिजेंस समिति का कहना है कि FBI के पूर्व निदेशक जेम्स कोमी मेमोरियल डे के अवकाश के बाद सदन के खुले सत्र में पेश होने के लिए तैयार हो गए हैं। समिति के चेयरमैन रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर रिचर्ड बर ने उम्मीद जाहिर की है कि कोमी हाल के घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण देंगे। वहीं डेमोक्रेट सीनेटर मार्क वार्नर का कहना है कि कोमी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए और अमरीकी नागरिकों को भी उन्हें सुनने का मौका मिलना चाहिए। अमरीकी संसद के दोनों सदनों की समितियों ने पद से हटाए गए FBI के पूर्व निदेशक जेम्स कोमी से सदन में पेश होकर राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव अभियान के रूस से संबंधों की जांच और खुद को पद से हटाए जाने तक के घटनाक्रम पर जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया था। डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही सऊदी अरब ने कहा है कि उनसे यमन के हूती विद्रोहियों की दागी गई एक मिसाइल मार गिराई है। यमन में हुती विद्रोहियों से सऊदी अरब के नेतृत्व में लड़ रहे गठबंधन ने बयान जारी कर कहा है कि सऊदी अरब की हवाई रक्षा प्रणाली ने राजधानी रियाद के दक्षिण में एक मिसाइल मार गिराई है। रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना के पास जवाबी हमले भी किए हैं। ईरान समर्थित हुती विद्रोही इससे पहले भी सऊदी अरब पर मिसाइल दाग चुके हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमर पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार की एक व्यापक जांच को प्रभावित करने के आरोपों में टेमर पर जांच चल रही है। अभियोजकों ने एक मीट पैकिंग फर्म के एक प्रमुख की गवाही से संबंधित दस्तावेज जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि टेमर की करोड़ों डॉलर रिश्वत लेने के एक मामले में भी जाँच हो रही है। राष्ट्रपति ने इन नए दावों पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव। पूरी दुनिया की निगाहें आज दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर रहेंगी। अमरीकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहले विदेशी दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत सऊदी अरब से होगी। 8 दिन के दौरे के दौरान वो इसराइल, फिलिस्तीनी क्षेत्र और वेटिकन भी जाएंगे। इस बीच अमरीकी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ट्रंप ने रूस के अधिकारियों से कहा था कि FBI के पूर्व प्रमुख जेम्स कोमी को पद से हटाने के बाद उन पर से दबाव घटा है। व्हाइट हाउस ने इन दावों का खंडन नहीं किया है। उधर ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का आज ऐलान हो सकता है। ईरान में कल करीब 70% मतदान हुआ। वोटर बड़ी संख्या में मतदान करने बाहर निकले और मतदान का वक्त करीब 5 घंटे बढ़ाना पड़ा। तहरान के एक वोटर ने कहा, ये मतदाता कह रही थी कि वो जानती थी कि बड़ी संख्या में लोग वोट देने के लिए बाहर आएंगे, लंबी कतारें लगी होंगी, इसलिए वो जल्दी वोट देने के लिए आ गई। राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से एक हैं मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी, बाकी के 3 उम्मीदवार हैं इब्राहिम रईसी, मुस्तफ़ा मीर सलीम और मुस्तफ़ा हाशमी तबा। लेकिन मुख्य मुकाबला उदारवादी रूहानी और रूढ़िवादी रईसी के बीच माना जा रहा है। रईसी ने चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत भी की है। इस बीच मतगणना शुरू हो चुकी है और अनुमानों और अटकलों का दौर भी जारी है। ईरान चुनाव को लेकर हमारे साथी संदीप सोनी ने BBC मॉनिटरिंग के तारिक अता से बात की और जानना चाहा कि चुनाव नतीजों के क्या मायने होंगे।
अभी मुख्यतः 2 कैंडिडेट हैं, एक हसन रूहानी जो अभी प्रेसिडेंट हैं, जिनको माना जाता है कि ये लिबरल हैं। दूसरे हैं वो इब्राहिम रईसी हैं, जिनकी छवि कट्टरपंथी मुस्लिम धर्मगुरु की है। वो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, आस्थान कुद्स रज़वी, और शियाओं के लिए वो बहुत बड़ा उसका मुकाम है। वो उसके हेड भी हैं और उसके पास पैसे भी बहुत हैं, इस वजह से उनका इन्फ्लुएंस पूरे ईरान में अच्छा खासा है। जो इलेक्शन की लड़ाई है इन्हीं दोनों के बीच में है।
तारिक, ये बताइए कि हसन रूहानी बने ईरान के राष्ट्रपति या फिर रईसी बने, नेतृत्व परिवर्तन से कुछ फर्क पड़ेगा ईरान में, ईरान के भविष्य पर, ईरान की योजनाओं पर?
देखिए, ईरान का जो सिस्टम है, खास करके जो इलेक्शंस होते हैं, जैसे इंडिया है जो कंप्लीट डेमोक्रेसी, या अमेरिका या इंग्लैंड है, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। वहाँ पर कई लेवल से होकर के कैंडिडेट्स को गुजरना पड़ता है। जब ये नॉमिनेशन करते हैं, उसके बाद एक गार्जियन काउंसिल होती है जो ये देखती है कि जितने कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन किया है, क्या ये ईरान के जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उसके फ्रेमवर्क में ये खरे उतरते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं होते तो वो उसका क्वालिफिकेशन उसको कैंसिल कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। इन दोनों में से जो भी इलेक्ट होकर के आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। वहाँ के सबसे सर्वोच्च नेता हैं अभी जो हैं वो अली खामनेई हैं। अगर वो उनके नज़रिए से तैयार नहीं होते या उसको अगर अप्रूव नहीं करते हैं, वहाँ का प्रेसिडेंट को ये डिस्क्रिशनी पावर नहीं है कि वो खुद से पहल करे कि हम अमेरिका से रिलेशन बढ़ाएं, जब तक कि उसको सर्वोच्च नेता अली खामनेई कुछ सिग्नल ना देते हैं। 2 साल पहले जो ईरान का अमेरिका और दूसरे पश्चिमी ताकतों के साथ जो न्यूक्लियर समझौता हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं जब आप सुप्रीम लीडर की स्पीचें सुनेंगे, उनके स्टेटमेंट्स, तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट उनका ये सुझाव होता है कि हाँ, आप जाइए, अब उनसे आप ये कीजिए।
अच्छा, भारत के हिसाब से देखा जाए तो हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति बने दोबारा या फिर रईसी बने, भारत ईरान संबंधों पर कुछ फर्क पड़ेगा?
देखिए, भारत ईरान के लिए बहुत बड़ा जो कह लें कि वो विवादित मुद्दा नहीं है। जैसे अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज साथ रिलेशंस की बात होती है, या अरब कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया के साथ, तो भारत के साथ रिलेशन उतने विवादित नहीं है। रूहानी जो हैं वो लिबरल हैं। भारत के लिए रूहानी आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इकोनॉमी को खोल रहे हैं। लेकिन वहाँ के सुप्रीम लीडर ने एक सुझाव दिया था, रेजिस्टेंस इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए। उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर रईसी जैसे हार्डलाइनर आ जाते हैं, तो शायद हिंदुस्तान को उतना फ़ायदा न हो का जितना कि रूहानी के आने से हो सकता है।
ईरान चुनाव पर तारिकता से बात कर रहे थे संदीप सोनी। ईरान चुनाव के लगातार अपडेट के लिए आप रुख कर सकते हैं bbchindi.com का।
बीबीसी इंडिया बोल्ड।
सफलता का ताला अंग्रेजी के बिना क्यों नहीं खुलता? हिंदी पर क्यों भारी है अंग्रेजी जीवन के हर क्षेत्र में? इंग्लिश मीडियम के बोलबाले के इस दौर में हिंदी माध्यम वालों का क्या है भविष्य? बीबीसी इंडिया बोल में इस बार मेहमान होंगे श्याम रुद्र पाठक, जो दशकों से लड़ रहे हैं हिंदी की लड़ाई। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो आप भी अपनी बात रखें और विशेषज्ञ की राय सुनें। हम रुख करते हैं भारत का। झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने कल जमशेदपुर, बागबेड़ा और मुसाबनी में विरोध प्रदर्शन किया। सबसे अधिक तनाव जमशेदपुर के हल्दीपोखर में है, जहां पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मृतकों के परिजन के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन परिजन ने इसे लेने से इनकार कर दिया है। हल्दीपोखर गाँव से रवि प्रकाश की ये रिपोर्ट सुनिए।
जमशेदपुर के पास हल्दीपोखर गांव में यूं तो रात 9 बजे सन्नाटे का आलम होता है, लेकिन पिछली 2 रातों से यहां सब जगा है। सारी रात लोग घरों से बाहर रहे और बैठकों का दौर चलता रहा। यहां के शेख नईम, शहजाद, शेख हलीम और सिराज खां को पास के गांव शोभापुर में उग्र भीड़ ने गुरुवार की रात पीट पीट कर मार डाला था। कल इनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, लेकिन गांव वालों के विरोध के कारण इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका। इसके बाद प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारी हल्दीपोखर गांव पहुंचे और आधी रात तक इन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने इनकी बात नहीं मानी और विरोध कर उन्हें वापस जाने को कह दिया। हल्दीपोखर के मुखिया सैयद जबीउल्लाह ने बीबीसी को बताया,
कल रात ग्रामीणों की एक बैठक हुई थी, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, से एक सरकारी नौकरी दिया जाए और जो है अविलंब उस पर कार्रवाई हो जो दोषी है, क्योंकि ये ब्रूटली मर्डर वाला केस है। 24 घंटे का हम लोग अल्टीमेटम दिए थे प्रशासन को, प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई इस तरह का नहीं दिखाई, कोई सक्रियता नहीं दिखाई है और हम लोग पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लाश को डिस्पोजल किया जाए पोस्टमार्टम करा के। पीड़ित परिवार साफ शब्दों में ये कह दिया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं जाती, ना ही हम लोग पोस्टमार्टम कराएंगे, ना ही उसे डिस्पोजल करें।
भीड़ द्वारा मारे गए मोहम्मद सज्जाद की बेवा नाजनीन परवीन का रोते रोते बुरा हाल है। उनकी गोद में सोने की कोशिश कर रही बेटी जहीन सिर्फ 3 महीने की है। उनके शौहर सज्जाद ने तुरंत घर लौट आने का वादा किया था, लेकिन नाजनीन को अभी तक उनकी लाश भी नहीं दिखाई गई है। उनसे बातचीत की कोशिश करता हूँ तो वे रोने लगती हैं। थोड़ा सहज होने पर कहती हैं कि उनके पति को जिस दरिंदगी से मारा गया, उनके हत्यारों को भी वैसे ही मौत मिले।
हमको इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को भी बदतर मौत होना चाहिए। हम बोल रहे हैं उन लोगों को भी ऐसे ही मौत होना चाहिए, नहीं तो हम मेरा जान में से सुकून नहीं मिलेगा कभी भी। उन लोगों को भी ऐसी मौत होना चाहिए जैसे उन लोग इनको किए हैं। कितना तड़प तड़प के मारे होंगे मेरे शोर, बोलिए कितना तड़प के जान निकला होगा उनका।
दरअसल सारा आक्रोश सरकार के खिलाफ है। लोगों का मानना है कि झारखंड की भाजपा सरकार नक्सलियों का तो अभिनंदन करती है, लेकिन आम आदमी के लिए उसके पास वक्त नहीं है। पुलिस इन मामलों में मृतकों के परिजनों द्वारा FIR दर्ज कराए जाने का इंतजार कर रही है। गुरुवार की रात हुई 2 घटनाओं में 7 लोगों के मारे जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस पर सवाल खड़े करता है। रवि प्रकाश, BBC के लिए, गाँव हल्दीपोखर, जमशेदपुर में।
उधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीते दिनों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 15 से 20 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया था। अब माओवादियों ने इस दावे का खंडन किया है। माओवादियों ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बल के जवानों ने कुछ गांवों में हमला कर कुछ घरों को आग लगा दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि खुद माओवादियों ने ही कई घरों को आग लगाई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं रायपुर से आलोक पुतुल।
मंगलवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF ने दावा किया था कि सुकमा और बीजापुर में माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें 15 से 20 माओवादी मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में CRPF का एक जवान भी मारा गया था, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ था। हालांकि इस मुठभेड़ के बाद किसी भी माओवादी का शव बरामद नहीं हुआ था। बस्तर में CRPF के IG देवेंद्र चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था।
सुकमा की सीमा पर एक सघन माओवाद विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 350 जवान अधिकारी हिस्सा लिए थे। फोर्स ने मुख्य लड़ाई 2 दिन लगातार लड़ी, होती 13 की रात में और 14 की रात में, और करीब 15 से 20 माओवादियों का मारा गया।
लेकिन अब CRPF के दावे के उलट माओवादियों के स्थानीय कमांडर जगदीश एरपा ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन में CRPF को ही नुकसान पहुंचा है, माओवादियों के पीपुल्स गोरिल्ला आर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
हमारे पीएल जी उनके ऊपर हमला किए, उसमें उनके जवान दो घायल हो गए और एक खत्म हो गए, और उसमें अपने पीएल जी का साथी एक को भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे ऊपर दुष्प्रचार कर रहे अपना आईजी 15 माओवादी खत्म हो गए बोल के। नहीं सर, हमारे तरफ तो कैजुअलिटी नहीं है सर, झूठा प्रचार हो रहा है सर, झूठा प्रचार।
माओवादियों के एक अन्य प्रवक्ता ने बीबीसी को फोन पर कहा कि कथित रूप से सीआरपीएफ के लोगों ने गांवों को घेर कर गोलियां चलाई और कई घरों को आग लगा दिया।
वहीं 13 से लेकर 15 तक सेट्टा बोरकेल, चिन्ना बोरकेल, रायगुड़म गांवों में हमला किया है। रायगुड़म गांव में अंधाधुन फायरिंग कर गांवों को घेर कर गरीब जनता अपनी मेहनत से कमाए पैसे को लूट कर 16 घरों को जला कर राख कर दिया।
हालांकि आगजनी की इस घटना को लेकर सुकमा पुलिस ने माओवादियों पर ही आरोप लगाया है कि उन्होंने दहशत फैलाने के लिए घरों में आग लगाई है। इस मामले में पुलिस ने माओवादियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पहले ही कहा है कि राज्य में सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल का ऑपरेशन जारी रहेगा।
अब ज्यादातर हमारे डीआरजी और सीआरपीएफ, आईटीपीबी, बीएसएफ मिलकर बेहतर ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन से ही होगा। स्थानीय पुलिस का क्षेत्र के प्रति नॉलेज भी रहता है और ऑपरेशन के बारे में लोकल सूचना तंत्र भी रहता है।
माओवादियों के खिलाफ चलने वाले अभियान को लेकर सवाल जवाब और आरोप प्रत्यारोप नए नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों के दावों पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग आयोगों ने लगातार सवाल खड़े किए हैं, जिससे निपट पाना सरकार के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
और हमारे साथ ही दिलनवाज आ चुके हैं स्टूडियो में दिल्ली से छपे सारे अखबारों को लेकर। क्या सुर्खियां हैं दिलनवाज
जी? वात्सल्य, जीएसटी काउंसिल की बैठक के दूसरे दिन सेवाओं पर भी नई दरें तय कर दी गई हैं, और यही खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर छपी है। अमर उजाला लिखता है, टेलीफोन बिल, बीमा, बैंकिंग और बिजनेस क्लास में हवाई सफर महंगा हो गया, और सिर्फ यही नहीं, रेस्टोरेंट में खाना खाना और भी कई चीज़ें महंगी हुई है,
लेकिन खाने पीने की कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं।
जी बिल्कुल। इसके अलावा एक और राहत की बात यह है कि सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं पर कोई नया कर नहीं लगाया है। आम आदमी पार्टी के इसके पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा रोज कुछ ना कुछ नए आरोप लगाए हैं। कल उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हवाला से जुड़े होने के आरोप लगाए, और एक नई बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्र पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया
जी। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से
जी, ये काफी लंबे समय से जी। भारत के पूर्व कोयला सचिव को एक मामले में दोषी करार दिया गया है। इन पर मध्य प्रदेश में जो कोल ब्लॉक थे उनके आवंटन में घोटाला करने का आरोप था, और इन्हें एक अदालत ने दोषी करार दिया है।
ये खबर भी इंडियन एक्सप्रेस में
जी बिल्कुल
कि आपने इसको दिया है, और इसी से जुड़ी हुई कुछ और खबरें भी आपके पास हैं। और हाफिज सईद की फंडिंग के आरोप में गिलानी के खिलाफ केस हुआ है, ये अमर उजाला ने खबर दी है।
इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जो ध्यान खींच रही है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि किसी भी समय ऑपरेशन के लिए तैयार रहें।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज। और अब वक्त है उस कार्यक्रम का जिसका हमारे श्रोताओं को रहता है पूरे हफ्ते इंतजार, यानी विवेचना। 26 साल पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्रीलंका के तमिल पृथकतावादी के एक आत्मघाती हमले में मारे गए थे। एक चुनाव सभा में जब वो अपने समर्थकों से मिल रहे थे, एक महिला ने झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की, तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और भारतीय राजनीति की दिशा बदल गई। राजीव गांधी के जीवन के अंतिम कुछ घंटों पर नजर दौड़ा रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
21 मई 1991 को शाम के 8 बजे थे। कांग्रेस की बुजुर्ग नेता मार्गातम चंद्रशेखर मद्रास के गुंदी हवाई अड्डे पर राजीव गांधी के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर पहले जब राजीव गांधी विशाखापट्टनम से मद्रास जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो पायलट कैप्टन चंदोक ने पाया कि विमान की संचार व्यवस्था काम नहीं कर रही है। राजीव चेन्नई जाने का विचार त्याग गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। टेलीग्राफ अखबार के लिए काम करने वाले रशीद किदवई बताते हैं,
राजीव गांधी बहुत थके हुए थे, लेकिन उनको एक एहसास था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर के कैंपेनिंग करनी चाहिए। उनको विशाखापट्टनम से चेन्नई जाना था, तो चेन्नई जाने के लिए जो एयरक्राफ्ट था उसमें कोई टेक्निकल स्नैग आ गया, तो राजीव गांधी वापस आ गए, और उमा गजपति राजू जो विशाखापट्टनम से इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने राजीव गांधी के लिए कुछ खाना, इडली और रसम वाला पिज्ज़ा वगैरह भी भेजा, लेकिन राजीव गांधी जब सर्किट हाउस जा रहे थे तो पीछे मोटरसाइकिल पर एक पुलिस वाला आया और उसने कहा कि नहीं नहीं आपका जहाज़ ठीक हो गया है, तो वो वापस चले गए। और उसमें वो खाना जो उन्हें भूख लगी थी जो था, वो जब जहाज़ में बैठे तो उन्हें पता चला कि खाना तो गाड़ी में ही रह गया। तो इस तरीके से वहाँ काफ़ी इस तरीके की बदइंतज़ामी थी। और राजीव गांधी की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी, लेकिन वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता होने की वजह से उन्होंने वहाँ मद्रास और सिरबुदूर जाने का फैसला लिया।
मद्रास के लिए विमान ने 6:30 बजे उड़ान भरी। राजीव खुद विमान चला रहे थे। जहाज ने ठीक 8:20 पर लैंड किया। वो एक बुलेट प्रूफ कार में बैठकर मार्गाथम, राममूर्ति और मोपनार के साथ श्री पेरम्बदूर के लिए रवाना हो गए। 10:10 पर राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर पहुंचे। पुरुष समर्थकों से मिलने के बाद राजीव ने महिलाओं की तरफ रुख किया। तभी 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला एक धमाका हुआ। उस समय मंच पर राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा है। वहां से मुश्किल से 10 गज की दूरी पर गल्फ न्यूज की संवाददाता और इस समय डेक्कन क्रॉनिकल की बेंगलोर की स्थानीय संपादक नीना गोपाल राजीव गांधी के सहयोगी सुमन दुबे से बात कर रही थी।
2 मिनट भी नहीं बात किया और वो बॉम्ब फटी मेरे आंखों के सामने। और मैं वाइट तो कभी नहीं पहनती, उस दिन रश में मैंने साड़ी निकला मेरी आंटी के कब्र से और पहन के आई, और मेरा साड़ी के ऊपर आज तक यू नो इट्स सच एन हॉरिबल फीलिंग, साड़ी के ऊपर ब्लड था, कुछ और था। द फैक्ट दैट वी सर्वाइव्ड आई थिंक इज अ मिरेकल, माइनर मिरेकल, क्योंकि हमारे सामने जो भी थे वो सब मर गए थे।
गुड इवनिंग, द फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैज बीन असैसिनेटेड। ही एंड एट लीस्ट 14 अदर पीपल वर किल्ड बाय अ बॉम्ब एट एन इलेक्शन रैली इन द टाउन ऑफ श्री पेरम्बदूर आउटसाइड मद्रास इन द साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु।
ब्लास्ट का आवाज तो बहुत पहले एक पट 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 ऐसे जैसे फायर क्रैकर्स होते थे ना, ऐसे लगा जैसे, फिर उसके बाद एक बड़ा सा वूश हुआ और फिर फटा वो। आई हैड जस्ट कवर्ड द गल्फ वॉर, मैं तो कुवैत में थी जब अमेरिकन ट्रूप्स थे लिबरेट कर रहे थे कुवैत, तो मुझे पता था कि ये छोटा बॉम्ब नहीं है, ये बड़ा बॉम्ब है। तो मैं आगे निकली टुवर्ड्स द बॉम्ब साइट और पूरा कपड़े, पीपल वर इन फ्लेम्स, यू नो चीख रहे थे, यू नो इट वाज कंप्लीट मेहम, कांट डिस्क्राइब इट, यू नो इट वाज लाइक पैनिक। हमको पता नहीं था ना कि राजीव गांधी मर गए कि नहीं मर गए, क्या हुआ।
श्री पेरम्बदूर में उस भयंकर धमाके के समय तमिलनाडु कांग्रेस के 3 चोटी के नेता जी के मोपनार, जयंती नटराजन और राममूर्ति मौजूद थे। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। उनके शरीर का एक हिस्सा औंधे मुंह पड़ा हुआ था, उनका कपाल फट चुका था और उसमें से उनका मगज निकलकर उनके सुरक्षा अधिकारी पी के गुप्ता के पैरों पर गिर चुका था, जो स्वयं अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बाद में जी के मोपनार ने एक जगह लिखा,
लोग दौड़ने लगे, मेरे सामने क्षत विक्षत शव पड़े हुए थे। राजीव के सुरक्षा अधिकारी प्रदीप गुप्ता जिंदा थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा, कुछ बुदबुदाए और मेरे सामने ही दम तोड़ दिया, मानो वो राजीव गांधी को किसी के हवाले कर देना चाह रहे हों। मैंने उनका सिर उठाना चाहा, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ मांस और खून ही आया। मैंने तौलिए से उन्हें ढक दिया।
मोपनार से थोड़ी ही दूर पर जयंती नटराजन अवाक खड़ी थी।
सारे पुलिस वाले मौके से भाग खड़े हुए। मैं शवों को देख रही थी इस उम्मीद के साथ कि मुझे राजीव न दिखाई दे। पहले मेरी नजर प्रदीप गुप्ता पर पड़ी। उनके घुटने के पास जमीन की तरफ मुंह किए हुए एक सिर पड़ा हुआ था। मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड, दिस लुक्स लाइक राजीव।
वहीं खड़ी नीना गोपाल आगे बढ़ती चली गईं, जहां कुछ मिनटों पहले राजीव गांधी खड़े हुए थे।
मैं सामने 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 गई, जितना भी सामने जा सकती थी, और मैंने उसका बॉडी देखा, मैंने शूज देखा उनका और उनका हाथ देखा। वो एक गुच्ची वॉच पहनते थे और गुच्ची का वॉच मेरे मुंह के सामने था, जहां मैं बैठ के इंटरव्यू कर रही थी गाड़ी के अंदर। उसका हाथ मेरे बिल्कुल मुंह के सामने, वो हाथ मैंने देखा। मुझे लगा कि कुछ बहुत हादसा हुआ है, और मरे कि नहीं मरे ये नहीं पता था ना उस वक्त, तो बॉडी देखा मैंने। वेरी स्ट्रेंजली ये राजीव गांधी के ड्राइवर हमको पकड़ा और उसने कहा कि मैं तुमको लेके जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे देखना है। इसने कहा अगर आप यहाँ ठहरेंगे तो यहाँ बहुत गड़बड़ होने वाला है, तो आप निकले। तो ऐसा एनीवे हम थोड़ा देर निकले और कुछ एम्बुलेंस ऐसा एक गाड़ी आया और उनको लेके जाते वक्त हम फॉलो किए और एम्बुलेंस और निकल गए।
लगभग उसी समय राजीव के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज अपने चाणक्यपुरी के घर में घुसे ही थे कि उनके टेलीफोन की घंटी बजी। सोनिया गांधी पर किताब लिखने वाले रशीद किदवई ने बीबीसी को बताया,
जब वो चाणक्यपुरी अपने घर पहुंचे तो उसी वक्त उनके पास फोन आया, कोई बहुत बुरी खबर है। तो वो फौरन वापस जो थे 10 जनपद पर आ गए। उस वक्त तक सोनिया गांधी को भी किसी ने खबर करी थी, तो उन्होंने उनसे इंटरकॉम पे फोन करके पूछा जॉर्ज से। तो जॉर्ज उस वक्त जो थे वो नलिनी चिदम्बरम, जो पी चिदम्बरम की वाइफ है, उनसे बात कर रहे थे। सोनिया गांधी होल्ड करती रही, फोन रखा। उसके बाद दूसरा फोन आया जो इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जो चेन्नई से आया था, और उसने एक तरीके से जॉर्ज को इस बात की कंफर्म कर दिया कि बम का धमाका हुआ है और वो अब जिंदा नहीं है। इस चीज़ को सुन के बिल्कुल जॉर्ज जो थे घबरा गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद वो दौड़ते हुए, क्योंकि 10 जनपद जो थोड़ा बड़ा एक उसमें बाहर जो प्राइवेट सेक्रेटरी का रूम है और घर है जो थोड़ा दूर है, 10-20 उसके फासले पर है, तो जॉर्ज को कभी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए सोनिया गांधी ने नहीं सुना था। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, मैडम मैडम। उधर से सोनिया गांधी आई और उन्होंने बहुत एक तरीके से सख्ती से जॉर्ज से पूछा कि मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ। तो जॉर्ज कुछ बस नज़रें झुकाए रहे, तो उन्होंने उनसे ये पूछा कि इज ही अलाइव, क्या वो ज़िंदा है। जॉर्ज की खामोशी जो थी उसने सोनिया गांधी को बिल्कुल बेकरार कर दिया और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगीं और चिल्लाने लगीं और बिल्कुल से कहते हैं ना अपना आपा खो बैठी। और वो ख़ुद अस्थमे की मरीज़ है, तो वो अस्थमा का भी उसी वक्त अटैक हुआ। प्रियंका गांधी जो सिर्फ 19 साल की लड़की, सो कुछ समझ में नहीं आया, वो दवाएं ढूंढती रही, दवाएं नहीं मिली, इनको पानी पिलाया गया, तो एक बहुत ही मतलब कोहराम मचा हुआ था।
राजीव की मौत के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन ने बाकी चरण के चुनाव को स्थगित कर दिया। 24 मई को उनकी अंत्येष्टि हुई जिसमें दुनिया के कई चोटी के नेता उपस्थित हुए।
This is the funeral of a leader who is not a political natural. Rajiv Gandhi lacked the ruthlessness of his mother and her cunning too. His elite upbringing meant that he didn't have the common touch. But those of us who had covered his final weeks of campaign had noticed one significant change.
कुछ दिनों बाद सोनिया गांधी ने इच्छा प्रकट की कि वो नीना गोपाल से मिलना चाहती हैं।
जब मैं दुबई वापस गई, ये इंडियन एम्बेसी के लोग मुझे फोन करके कहा कि सोनिया जी आपसे मिलना चाहती हैं। मैं जून फर्स्ट वीक में वापस दिल्ली गई थी और उनसे मिला। इट वॉज अ वेरी इमोशनल, वेरी डिफिकल्ट मीटिंग आई थिंक फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि बस एक ही बात वो सुनना चाहती थी कि मेरा हस्बैंड का मूड कैसे था, व्हाट डिड ही से, व्हाट वर हिज लास्ट वर्ड्स, बिकॉज ही बेसिकली डाइड। I heard later कि उसने he died with my name on his lips. वो तो जयंती नटराजन से कहा कि where is that Gulf News girl, go get Nina. तो जयंती उससे मुड़ के मेरे पास आ रही थी और वो बॉम्ब फटा, वो मेरी हाथ पकड़ी और she just cried, the tears were streaming down her face and she just said tell me everything, tell me what he said, what was his mood. And I said he was like walking on air. He knew he was going to win. He was in such a good mood. Kuch bhi ho, he was willing to accept it. Log dhakke mare, usko cheek pinch kare, kuch bhi ho. He was in such a high.
Indira Gandhi ke pradhan sachiv rahe PC Alexander ne apni kitab My Days with Indira Gandhi mein likha hai ki Indira Gandhi ki hatya ke kuch ghanton ke bhitar All India Medical Institute ke galiyare mein मैंने सोनिया गांधी को राजीव गांधी से लड़ते हुए देखा था। वो सोनिया को बता रहे थे कि पार्टी चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूं। सोनिया ने कहा किसी कीमत पर नहीं, वो लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। राजीव का जवाब था मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। 7 वर्ष बाद राजीव के बोले वो शब्द सही सिद्ध हुए थे। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
विवेचना पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और आखिर में सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
ईरान के राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति हसन रूहानी को चुनौती दे रहे उम्मीदवार इब्राहिम रईसी ने मतदान में अनियमितताओं की शिकायत दर्ज करवाई है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस आए रूसी अधिकारियों से कहा था कि एफबीआई के पूर्व निदेशक जेम्स कोमी सनकी थे और उन्हें पद से हटाकर उनके ऊपर से बहुत दबाव कम हुआ है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। स्टूडियो संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे इंडिया बोल में होगी। बदलती खबरों के लिए तब तक आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।